रीढ़ की हड्डी की चोट के हवाले से हम बात करेंगे। और पहला सवाल मैं जो पूछना चाहूंगी आपसे कि कहते हैं रीढ़ की हड्डी इंसानी बदन या इंसानी जिस्म का जो सुतून माना जाता है, इसे तो बताइए हमें।
बिल्कुल जी, इंसानी जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये रीढ़ की हड्डी। इसको हम हड्डी कहते हैं, ये हड्डियों का मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी हड्डियों का मजमूआ होता है। बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उस वक्त इनकी तादाद 33 है, और फिर उसके बाद कुछ नीचे जो हैं वो हड्डियाँ फ्यूज़ होती हैं, और ये एक बालिग फ़र्द है उसमें तकरीबन इनकी तादाद 26 रह जाती है। तो अब एक जो बालिग मर्द होता है उसमें रीढ़ की हड्डी की जो लंबाई है वो तकरीबन 26-27 इंच होती है, और ये जो एक बालिग खातून है उनमें तकरीबन 24 इंच के करीब इसकी लंबाई रहती है। वो कद के लिहाज से 2/5 जो है वो होती है रीढ़ की हड्डी। अब इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि हराम मग्स इसमें से गुजर रहा होता है, यानी एक तरह से रीढ़ की हड्डी ने उसको प्रोटेक्शन दी होती है कि अगर खुदा न खासा हराम मग्स जो है वो बड़ा नाजुक होता है और हमारा जो असाबी निज़ाम है वो सारा इसी की मरहून मिनत होता है। हमारा जो असाबी निज़ाम है दो हिस्सों पे मुश्तमल होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मरकजी असाबी निज़ाम, उसमें दिमाग आता है जो सर की हद तक महदूद होता है, और साथ जो है हराम मग्स। फिर यहाँ से असाब की शाखें निकलती हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाती हैं। देखिए, हमारे हरकत जिस्म का करना और जिस्म का जितना भी एहसास जो हैं, आप किसी चीज़ को आप टच करते हैं उसको करते महसूस है। करना या ठंडा गर्म है, वो सारा इन्हीं असाबी निज़ाम के ज़रिए हराम मग्स, हराम मग्स से दिमाग, और दिमाग को सारा जो है पैगाम और अहकाम सारा इन्हीं के ज़रिए जो है हो रहा होता है। इसके अलावा भी जो जिस्म का नीचे वाला ताड़ है और ऊपर वाला थर्ड, उसमें दरमियान में एक तरह से स्ट्रक्चर ने एक स्टेबिलिटी, एक मजबूती फ्राहम की होती है। जो ये जो हमारी पसलियां हैं ये भी पीछे इसी रीढ़ की हड्डी को जाके जोड़ रही होती हैं, उनको थामा होता है। फिर मुख्तलिफ तरह के जो पट्टे हैं, लिगामेंट्स हैं, वो यहाँ पे मुतसिल होती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो हम ढांचा देख रहे हैं ये हमें नज़र आता है। अब इस पे चोट लगने का भी ख़तरा होता है। अब हराम मग्स जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो दुनिया में एक बड़ा अहम मौजू है, मुख्तलिफ तरह की तहकीक इस पे हो रही हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ आती हैं। मुख्तलिफ तरह की जो चोटें लगती हैं इंसान को मुख्तलिफ तरह के हादसात में गिरने की वजह से या खेल कूद के दौरान, तो उसकी वजह से जो सेहत के मसाइल हैं उस पर काबू का पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुख्तलिफ तरह से तहकीक हो रही हैं ताकि इस तरह के जो मरीज़ हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, उनको भी दोबारा से अपनी असल हालत तक लाया जा सके। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये जो रीढ़ की हड्डी है, अब रीढ़ की हड्डी में मुख्तलिफ इसके हिस्से होते हैं, गर्दन वाला हिस्सा, उसमें 7 वर्टिब्राज वही मोहरे जिनको हम ये जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं गर्दन वाले हिस्से के, फिर 12 जो है ये थोरेसिक रीजन जो होता है सीने वाला, फिर 5 लुम्बर, फिर उसके बाद सैक्रल और कॉक्सिक, एक एक वही जो हमने बात की थी कुछ हड्डियाँ फ्यूज हो जाती हैं। तो अब इन्हीं में से वही असाब का मुख्तलिफ जो एक निज़ाम बाहर आ रहा होता है। तो जब इस पे चोट लगती है, अब चोट लगने के बाद देखें ये जो असाब आता है, असाब के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, नर्व रूट्स जो यहाँ से निकलती हैं, तो ये जो मुख्तलिफ इसके लेवल हैं, गर्दन वाला हिस्सा हो गया, सीने वाला थोरेसिक लोम्बर, तो इसके असरात जो इसकी इलामत होती हैं उसका इनसार इस बात पे होता है कि चोट किस हिस्से पे लगी है। और ये चोट बहुत ख़तरनाक होती है, और इसीलिए जब कभी एक्सीडेंट होता है, जो सड़क पे कोई हादसा पेश आता है, और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी एक जो सख्ती के साथ ये रिकमेंडेशंस होती हैं कि आपने वहाँ पे जो जिस बंदे को चोट लगी है उसको खुद नहीं उठाना जब तक कि महकमा सेहत की कोई एमरजेंसी टीम वहाँ पे नहीं पहुँचती। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे अगर किसी को चोट लगी है और खुदा न खास्ता उसकी रीढ़ की हड्डी हराम मग्स पे कोई चोट लगी है, और उसको जब उसी दौरान आप उठाते हैं दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो उसके जो अगर हराम मग्स उस पे शदीद किस्म की चोट लग गई तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, वो असाबी निज़ाम दरम बरम कर सकती है। फिर इसकी जब चोट लगती है तो इसकी फिर मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। अब चोट हल्की भी हो सकती है, शदीद भी हो सकती है, इसको हम मेडिकल की इस्तेमाल में जब तकसीम बंदी करते हैं तो कम्प्लीट और इनकम्प्लीट के ज़रिए। कम्प्लीट में ये होता है कि कोई भी آپ جو ہے وہ موٹر اور سینسری جو پیغامات جو ہیں وہ اوپر تک جاتے ہیں یا اوپر سے حرکات والے پیغامات آتے ہیں، وہ دونوں مختلف ہو جاتے ہیں، وہ دونوں اختلال کا شکار ہوتے ہیں.
صحیح.
تو وہ حرکت نہیں رہتی، وہ کوئی چیز محسوس نہیں کر رہا ہوتا، وہ متعلقہ حصوں میں جو انکمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس میں یہ کچھ نہ کچھ ان دونوں چیزوں کی جو ہے وہ کیفیت رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے کی طرف جیسے 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 مریض کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس میں ریکوری کا ایک چانس ہو، بالکل بہتری کا ایک چانس رہتا ہے.
ایک دو سوالات آئے ہیں، ایک تو پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم سوئمنگ کے ذریعے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی تو فوری آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے.
جی، یہ جو سوئمنگ والی بات ہے، دیکھیے اگر تو چوٹ حرام مغز پہ ہے اور شدید ہے پھر تو ہلنے جلنے والا بھی وہ سوال پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ، لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ان کو کمر درد ہے یا ریڑھ کی ہڈی اس میں پورے میں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ پٹھے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سوئمنگ کو اس وقت ریکمینڈ کیا جاتا ہے جب فرض کیا عام فضا میں جب کوئی فرد چلتا ہے اور اس کو درد محسوس ہوتا ہے، اور اس میں بہت ضروری ہوتا ہے، اکثر لوگ درد کی شدت کی وجہ سے وہ چلنا پھرنا اپنے بیڈ تک ریسٹرکٹ ہو کے رہ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پیچیدگیاں آتی ہیں. اس لیے مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ حرکت میں رہے تاکہ وہ حرکت کے ساتھ بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے. فیزیوتھراپی اس لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو یہ جو سوئمنگ ہے اس وقت ریکمینڈ کی جاتی ہے جب ایسے وہ نہیں چل سکتا، اس کو درد محسوس ہوتا ہے جب وہ پانی میں جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک طرح سے وزن اتنا جو شدت سے پڑتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور درد کا احساس کم ہوتا ہے، اور حرکت جو ہے موومنٹ اس کو ہم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے بلڈ سرکولیشن میں بہتری آتی ہے اور فرد بہتری کی طرف جاتا ہے. اور دوسرا سوال کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں کوئی یہ مسئلہ بنا ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگی ہے اور اسپائنل کارڈ وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے، تو اس میں سرجری ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے، اگر تو یہ جو مہرے ہیں وہ آگے پیچھے اس حد تک ہل گئے ہیں کہ ان کو فکس کرنا بہت ضروری ہے، وہاں پہ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہلکی پھلکی چوٹ ہے اور اگر اس کے جو اس طرح کی علامات نہیں آ رہی، یہ جو ہاتھ پاؤں کا سونانا یا مختلف طرح کی حرکات اس طرح سے مقتل نہیں ہوئی، تو وہاں پہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ریسٹ، ایک طرح سے احتیاط برتی جانی چاہیے، اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کا جو سٹرکچر ہے وہ خراب ہوا ہے، وہ ڈھیلا ہوا ہے اور ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ ہے اسپائنل کارڈ پہ، تو وہاں پہ سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے.
یعنی چوٹ کی شدت کو دیکھتے ہوئے کام،
چوٹ کی شدت اور شدت کے ساتھ ہے علامات کو دیکھتے ہوئے، اور کسی بھی فرد کو جب اس طرح ان حصوں پہ چوٹ لگتی ہے اور بہتر ہوتا ہے کہ احتیاط برتی جائے، اور یہ جو علامات جس پہ ہم بات بھی کریں گے، اگر اس طرح کی علامات کا کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ احتیاط برتے مختلف طرح کے کام کاج میں، اور یہ میڈیکل ڈاکٹر اس کے انڈر آبزرویشن رہے تاکہ کسی بھی طرح کی پیچیدگی سے بچا جا سکے.
ڈاکٹر صاحب تصویریں یہاں پر آ رہی ہیں،
آپ دیکھیں ان تصویروں میں بھی ریڑھ کی ہڈی کو اسپائنل کالم اس کو کہتے ہیں، ورٹیبرل کالم کہتے ہیں، اس کو دکھایا گیا ہے. یہ جو سامنے ایک خط ہے، یہ ایک سیدھی ریڑھ کی ہڈی جو دکھائی گئی ہے، یہ اس وقت نظر آتی ہے جب آپ فرد کو سامنے سے دیکھتے ہیں. اگر ایکس رے جو ہے اس کا پہلو سے سائڈ سے لیا جائے تو وہ ساتھ جو ہے کرو ہیں وہ دکھائی گئے ہیں. دو کرو جو ہیں وہ سب سے پہلے وجود میں آتے ہیں، گردن والے حصے والا اور یہ جو کمر والے حصے والا. یہ والے جو ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری، یعنی یہ بعد میں آتے ہیں. یہ جو پرائمری کرو ہوتا ہے یہ سینے والا حصہ، جس طرح وہ ایک سی شکل ہوتی ہے، تو یہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ کرو ہوتا ہے، اور اس کے بعد گردن والا حصہ جب بچہ گردن کو سہارا دیتا ہے اس وقت وجود میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب کھڑا ہونا شروع کرتا ہے چلنا شروع کرتا ہے تو اس وقت لمبر ریجن کمر والے حصے، اور تقریباً 10 سال کی عمر میں یہ کرو جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اور اس میں مختلف جو ہے وہ بہت زیادہ واضح چونکہ تصویر نہیں ہے. پھر آپ کو یہاں پہ جو بلیو ہلکے بلیو رنگ میں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بیچ میں ڈسکس ہوتی ہیں، یہ جو مختلف ورٹیبرا ہیں ان کے درمیان ڈسک کا بھی اس طرح کی اسٹرکچر، اس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، اس کے جو باہر والا حصہ وہ قدرے سخت ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے سے حرام مغز گزر رہا ہوتا ہے پوری ریڑھ کی ہڈی کے. یہ ڈسک کے بھی بہت زیادہ مسائل بنتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈسک उस पे सोजिश आ जाती है, कोई जब चोट लगती है तो उसके बाद सोजिश का अमल एक तरह से प्रोटेक्टिव होता है। और इस तस्वीर में हम वाज़े तौर पे डिस्क को भी देख सकते हैं और रीढ़ की हड्डी के पीछे से जो आप पीले रंग में देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस हालत में ये होता है और उसका जो नरम हिस्सा और खारजी जो है उसका कदर सख्त हिस्सा और इसी हरामक से साइडों से स्पाइनल नर्व गुजर रही होती हैं। बस को ऐसा होता है कि जब चोट लगती है या उसके इर्द गिर्द लिगामेंट्स वगैरह जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो गए तो डिस्क ये एक दबाव इस तरह का पड़ता है कि वो बाहर की तरफ दबाव डालना शुरू करती है। और ज़्यादा अक्सर औकात ये होता है कि इसका पोस्टीरियर जो पिछली साइड है जिस तरफ वो पीले रंग में नर्व रूट्स निकलती दिखाई गई हैं वहाँ पे इसका दबाव पड़ता है। तो उसकी वजह से बाज लोगों को वो कोई कहता है कि मुझे वो टांग में दर्द हो रहा है और इसका दर्द जिन जिन हिस्सों के इसकी नर्व सप्लाई जा रही होती है वहाँ पे इसकी इलामत जाहिर हो रही होती हैं। और जिस तरह अक्सर लोग शियाटिका की शिकायत कर रहे होते हैं वो भी इसी वजह से होता है, वो जहाँ से नर्व इसकी सप्लाई जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ पे सियाटिक नर्व का एक ओरिजिन होता है तो वहाँ से बास का ये होता है कि जो हरामक्स यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि वो स्पाइनल स्टीनोसिस होता है वो हिस्सा तंग होना शुरू हो जाता है। तो उसकी इलामत दोनों तरफ महसूस हो रही होती हैं यानी फर्द के दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। तो ये एक तरह से एक हम उसका जो डिस्क है और स्पाइनल कॉर्ड है उन हिस्सों को हमने इस तस्वीर में देखा,
वाज़े तौर पर देखा,
बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा। और ये बड़ा अहम होता है स्पाइनल कॉर्ड और इसकी जो इलामत हैं हत्ता अगर गर्दन वाले हिस्से में इसको अब चूंकि इसका C1 C2 ये जो 7 वर्टिब्रा हैं और इसके बाद इनकी वो 8 तक स्पाइनल नर्व जाती हैं ये अगर गर्दन के जो C1 से लेके C3 तक यहाँ पे अगर चोट लगती है तो आपके सांस को मसला निज़ाम तनफ़स को वो मख्तल करता है और निज़ाम तनफ़स की वजह से अक्सर लोगों की जब ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उनकी वजह से लोगों की अमवात वाकई होती हैं। फिर उससे अगर नीचे जब आते हैं तो वो बाजू और इस तरफ ये सारी जो नर्व सप्लाई देती हैं और इसी तरह वो नीचे तक जो है फिर नीचे लुम्बर वाले हिस्से जो निकलती हैं वो टांगों की तरफ
जहाँ जहाँ ये सप्लाई जा रही है वहाँ वहाँ आप दर्द का एहसास कर सकते हैं। जी
बहुत सारे वाकयात जो पेश आते हैं एक्सीडेंट्स ये सब होते हैं हम लोगों के यहाँ, तकरीबन जनूबी एशिया में पूरे में यही होता है कि सबसे पहले सब जो है इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ पे भीड़ भाड़ के हुआ क्या है और ये सब है और फिर जो है वो ज़बरदस्ती वो बेचारे को अगर एक्सीडेंट हुआ है ज़बरदस्ती बाहर खींचा जाएगा कि वो बेचारे हड्डी पसली एक हो जाती है। और नुकसान ये पहुँचता है कि हम लोग जो है वो आखिरी काम जो करते हैं वो एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। लेकिन जिस वेबसाइट पे भी आप जाइए मोतबर तरीन वेबसाइट्स पे जो फर्स्ट एड के सिलसिले में सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले आप इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करें। ये काम अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं और फिर फर्स्ट एड का अगर आपने कोर्स किया है वो तो अलग ही मसला है। चलते हैं रुबाब मंसूरी की तरफ।
बिल्कुल हसन भाई, मेरे ख्याल से शख्स की हड्डी टूटी भी ना हो तो हम खींचते वक्त जो है 2-3 हड्डियाँ तोड़ ही देते हैं मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ का हमें काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। और चलते हैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी की चोट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हरामक्स जो हमारा आज का मौजू है, वजूहात की तरफ चलते हैं। क्या होता है ऐसा जो ये मसला पेश आता है?
बिल्कुल, एक तो जिस तरह हसन भाई ने बात की कि ये जो हादसात होते हैं रोड एक्सीडेंट्स इनकी वजह से एक बहुत बड़ी जो इन लोगों की तादाद है जो इस मसले का शिकार होती हैं यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे चले बात निकली तो ये बताता चलूँ जब इस तरह की इमरजेंसी कोई सिचुएशन होती है तो उसमें फ़र्द को हिलाना नहीं होता वहाँ से, लेकिन अगर खुदा न खासा किसी जगह से कोई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे उसको उसी जगह पे उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें। या उसमें अगर जिस तरह हसन भाई ने बात की कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको ऑक्सीजन का मसला बन रहा है तो लोगों को थोड़ा सा मसला हटाना चाहिए। तो अब देखें इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह जिस तरह खेल कूद के दौरान और खेल कूद की वजह से भी जो इंजरी होती है उसमें उम्र का भी अगर देखा तो वो 16 से लेकर 30 साल की उम्र के जो अफराद हैं वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। फिर बुढ़ापे में जो 65 से अबव जो अफराद हैं हमारे बूढ़े अफराद उनमें ये मसला गिरने की वजह से होता है क्योंकि उस वक्त आसाबी निज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा दरम बरम होता है, उनका जो बैलेंस सिस्टम है वो ख़राब हुआ पड़ा होता है तो उसकी वजह से भी ये बहुत से इस तरह के मसले बिल्कुल सामने आते हैं। तो इसके अलावा बाद बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से, एक तो हमने अब तक जो बात की है ये जो ट्रामेटिक रीज़न जो
जो
हैं
बाहर
इसकी,
से चोट आपको लगती है?
बिल्कुल चोट जो लगी है, बास को तो नॉन ट्रॉमेटिक के जिसमें बगैर चोट के फ़र्ज़ किया, और आर्थराइटिस है किसी को, मुख्तलिफ तरह के आर्थराइटिस जो अकसाम हैं वो रीढ़ की हड्डी को भी डैमेज कर रही होती हैं, तो उसकी आर्थराइटिस की वजह से हड्डियों के वो हिस्से काफ़ी हद तक कमज़ोर हुए होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो C5 6 7 ये गर्दन के ये वाले हिस्से, यहाँ पे चोट लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है, या आर्थराइटिस वगैरह। और इस जो जो ज़्यादा चीज़ आ जाती है जिन लोगों में, दूसरी मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ लगी होती हैं, उन बीमारियों के साइड इफेक्ट्स की वजह से मसलन ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, जिसको हम फारसी में पुख्यूस्कान कहते हैं या उर्दू में कह लेंगे खोखलापन हड्डी का, तो इन वजूहात की वजह से ये जो उसकी हिफाजती हिसार होता है हराम मक्स का, स्पाइनल कॉर्ड का, वो जब कमज़ोर होता है तो वो किसी हल्की सी चोट की वजह से भी वो स्पाइनल कॉर्ड हर्ट हो सकता है, उसको फिर जितनी चोट की शिद्दत ज़्यादा होगी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान भी उतना ही पहुँचेगा। देखें ये एक अहम तस्वीर है, और जिस तरह हमने रीढ़ की हड्डी की बात की थी कि उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे गर्दन वाला हिस्सा, उसके बाद सीने वाला, थोरेसिक, लम्बर, सैक्रल और कॉक्सिक, वो जो पांच ये मुख्तलिफ जो अदद हैं ये वर्टिब्राज की तादाद है, लेकिन सैक्रल और कॉक्सिस ये फ्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर वो एक एक ही हम उसको गिनते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने ये जो इंजरी दिखाई गई है, अगर वो जो C4 इस तरह वो उसका वो जो स्पाइन नर्व नंबर, और सी जो है वो गर्दन वाला हिस्सा सर्विकल जो, तो वहाँ देखें उसमें उसके साथ साथ उन्होंने एक वो रेड कलर में वो चीज दिखाई गई कि ये हिस्से जो हैं होते हैं, जिस जगह पे हम जिस तरह वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि जिस जगह पे इंजरी होगी उसके लेवल के साथ ही वो हिस्से मुतासर होंगे। अगर कमर वाले हिस्से में जिस तरह अगर नीचे से देखेंगे लंबर वाला हिस्सा L1 पे कोई इंजरी होती है तो वो टांगें जो हैं वो मुतासर होंगी वहाँ पे। अब फिर उसके बाद उसका इनसार भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की शिद्दत पर होता है कि वहाँ पर वो मोटर फंक्शन जो मूवमेंट वो भी उसकी मुख्तलिफ हुई हैं, और साथ है वो सेंसरी फंक्शन उसका जो महसूस करने वाला वो भी उसके साथ खराब हुआ, और फिर जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे उसके बाद इसका दायरा बढ़ता जाता है। और सबसे खतरनाक जिस तरह बात की थी कि ये गर्दन वाला हिस्सा होता है, अब जब गर्दन वाले हिस्से में ये मसला बनता है तो इसके साथ निज़ाम तनफ्फुस मुतासर होता है जो बहुत खतरनाक होता है।
अबू मोहम्मद अलमासी साहब ओमान से हम लोगों से पूछते हैं कि बगैर चोट लगने के एक इंसान के कमर में क्यों दर्द होता है और उसकी क्या वजह हो सकती है। और एक और सवाल आया था, उसमें पूछा गया है कि ये कमर की जब चोट लगती है एक्सीडेंट होता है तो इसको कहाँ से पता लगाएं कि हम लोग इसमें मदद कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में एक आम इंसान की बात हो रही है।
देखिए जो पहला सवाल है कि बगैर चोट लगे जब कमर का मसला इस तरह का बनता है वो उससे मरबूत होता है कि कोई अंदरूनी कोई बीमारी भी चल रही होती है। बाज़ का होता है कि रेफरल पेन होते हैं, मसला किसी और जगह पे होता है, मसला फ़र्ज़ किया आपकी जो आंत है डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला है उसका रेफरल रोके पेन जो है वो कमर के हिस्से में आ रहा होता है, या किडनी में कोई मसला है वो वहाँ पे शो हो रहा है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपके कामकाज की वजह से जो सारा दिन आप कुर्सी पे बैठना, ड्राइविंग करना, या ख़ास तरह का काम जिसमें खड़े रहना, या रोज़मर्रा का जो काम है उसमें आपकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है आपकी रीढ़ की हड्डी में वो वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही होती है, पट्ठों का इम्बैलेंस होता है जो आपके जो सामने वाले पट्ठे हैं और पीछे वाले पट्ठे, और पीछे वाले पट्ठों पे जब ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ रहा होता है वो स्ट्रेन में चले जाते हैं तो इसकी वजह से कमर दर्द हो रहा होता है, या जब जिस बेड पे आप सोते हैं वो ठीक नहीं होता, इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। और फिर ये डॉक्टर ये फिजियोथेरापिस्ट ये बेहतर तौर पर वो उसकी मरीज़ की हिस्ट्री लेके बताता है के कहाँ पे मसला है। जो रीढ़ की हड्डी को अगर स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगती है और उस पर फौरी तौर पे बेहतर है कि एमरजेंसी टीम को आने दें, वो आके पता लगाएं कि फ़र्द की उसकी मुख्तल तरह के पॉइंट होते हैं वो देखने होते हैं, वाइटल साइंस वगैरह वो आके पता लगाएं। लेकिन अगर खुद को आदमी को जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए देखें तो उसके हाथ की मूवमेंट देखें, उसका होश देखें, अपने होश व हवास में है, उसका वक्त को सही बता रहा है, पहचान कर रहा है लोगों को, उसके जो मुख्तल जिस्म के मुख्तल हिस्सों की मूवमेंट है वो ठीक है, तो उस सूरत में वो फ़र्द खुद भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरी सूरत है, कोई हाथ पाँव उसमें हिलाने से कासर है, तो बेहतर है कि मेडिकल टीम को आने दें, वो आके अपने बेहतर तौर पे जांच पड़ताल करके फर्द को दूसरी जगह पे लेके जाएं।
दे सकती हूं जी, चलते हैं तस्वीर की तरफ।
अब देखें इस तस्वीर में भी जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो इलामात हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है। अब उस इलामात की शिद्दत का इनसार भी रीढ़ की हड्डी के जिस हद तक स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगी होती है उस पे होता है, जिस तरह के दर्द गर्दन के ऊपर जो है एक बहुत तरह का दबाव होना या मसलन सर दर्द महसूस होना, ये भी होता है कि यहाँ पे पेन, जिस तरह मैंने रेफरल पेन की बात की है, गर्दन के जो पट्टे हैं यहाँ का दर्द भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अगर इन हिस्सों पे चोट हो, इन हिस्सों पे दबाव हो, तो इसका एहसास भी जिसम के दूसरों हिस्सों को होता है। उसमें कमर दर्द हो सकता है, एक तरह के तवाज़न का हम आहंग ना होना, जिन लोगों को ये मसला होता है वो अक्सर औकात वो गिरते हैं, फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कमजोरी का एहसास होना, सांस लेने में एक तरह की दुश्वारी पेश आना जो महसूस करने की हिस होती है उसमें कमी हो सकती है, या जिस तरह जिसमें एक तरह का करंट लगता है, टिंगलिंग की सिचुएशन है, वो पैरों में भी हो सकती है, हाथों में भी हो सकती है, हाथों पैरों का सोन होना। और अगर ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पे आके ख़त्म होती है, देखें ये बात शुरू में बतानी चाहिए थी, ये कॉडा इक्विना रीजन होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक्त स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी एक साथ साथ ही बढ़ रही होती हैं, लेकिन चार पाँच साल की उम्र तक ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ रुक जाती है लेकिन रीढ़ की हड्डी बढ़ती जाती है। और उसके जिस तरह घोड़े की दुम होती है इस तरह की, अगर शक्ल देखें तो नीचे से वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसके बाद नीचे शाखें निकलती हैं। अगर उस हिस्से को हम कॉडा इक्विना रीजन कहते हैं, अगर वहाँ पर चोट लगती है, वहाँ पर सोजिश आती है, सोजिश का वहाँ पर स्कार टिश्यू वगैरह बनते हैं, तो उसका असर हमारे ये जो ब्लैडर रीजन होता है, मसलन पेशाब पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं रहता, वास लोगों को इसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पेशाब के कतरे जो हैं वो गिर रहे होते हैं, तो इस तरह की जो है इलामात जाहिर हो रही होती हैं। अब इस तस्वीर में जिस तरह आपने सवाल पूछा के वजूहात, इसमें देखें उसमें फिगर के साथ वजूहात बयान की गई हैं कि 53% जो है इसमें हादसा जो हैं जो गाड़ियों वगैरह के, उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी जो मुख्तलिफ तरह के हालात में गिरना और दूसरी जो बीमारियों की वजूहात शामिल हो सकती हैं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और तस्वीरों के साथ आपने हमें वाज़ह तौर पर बताया कि रीढ़ की हड्डी की चोट या फिर हरामक्स का चोट जो है ये कितना एक अहम मसला है, और शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे बहुत से काम कर जाते हैं जिससे हम अपनी रीढ़ की हड्डी को और ख़ुद हरामक्स जो है उसे बहुत सारे नुकसान पहुँचाते हैं।